Dear brothers and sisters,
प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे दोस्तों, और आपको खुशहाल बड़ा दिन की शुभकामनाएं देते हैं और आपको प्रथम अध्यक्षता के बड़ा दिन संदेश पर स्वागत करते हैं। हम आभारी हैं आपके संग इस मौके पर मिलकर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म, जीवन और मिशन को याद करने और मानने के लिए। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन, जो आज शाम अध्यक्ष कर रहे हैं, ने कहा कि मैं इस संदेश का संचालन करूं। हम प्रथम अध्यक्षता और गिरजाघर के अन्य महा अधिकारी और महा अफसरों का सम्मान करते हैं जो आज शाम यहाँ उपस्थित है। इस डिवोशनल का संगीत मोमन टैबनकल गायक मंडली और ऑर्केस्ट्रा टेम्पल स्क्वायर प्रदान किया जाएगा मैक वुलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में। एंड्रू आंसवर्थ का ऑर्गन पर साथ देंगे। गायक मंडली इस सभा का शुरुआत करेगी ओ कम ऑल ई फेथफुल गाकर। बहन जॉय डी जोन्स प्राथमिक की महाध्यक्षता प्रार्थना करेंगी।
Our Father in heaven,
हम आभारी हैं इस पवित्र सब्त के दिन के लिए, हम आभारी हैं यहाँ इकट्ठा होने के लिए, आपके इस बड़े दिन को मनाने के लिए, हमारे उद्धारकर्ता के जन्म को मनाने, हम खुश हैं उसके जन्म के लिए और उसके कार्य के लिए, हम आभारी हैं उसके प्यार के लिए और उसके उजाले के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद देंगे कि हम वो उजाला बांट पाएंगे और हम वो उजाला हमारे आसपास के लोगों के साथ बांट पाएं और हम दूसरों की सहायता कर पाएं जिनको हमारी ज़रूरत हो, और हमें सहायता दीजिए कि हम देख पाएंगे जैसे हम दूसरों की सहायता कर पाएंगे और उनको प्यार कर पाएंगे। हम आभारी हैं आपके लिए, हमारे प्रधान मानसून के लिए, हम आभारी हैं उसके लिए और उसके आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद उनके ऊपर हम मांगते हैं, और हम 12 धर्मदूतों के लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज संदेश तैयार किए हैं, और आपकी आत्मा उनके साथ रहे और आप उनको आशीर्वाद मिले ताकि आपके संदेश वो हमें दे पाएँ। हम पवित्र आत्मा को के भी आशीर्वाद मांगते हैं इस सुंदर शाम को जो हम इकट्ठा बांट रहे हैं। हम आपका प्यार महसूस करते हैं और ये हम ईसा मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन।
We will now be pleased.
अब हम एल्डर डेलन एच ओक्स जो बारह देवदूतों के प्रसाद के है से सुनना चाहेंगे। उनके संदेश के बाद गायक मंडली गाएगी इन द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड जो कि मिसाया नाम के एल्बम से है। एल्डर क्रेक्सी क्रिसेंसन जो 70 की अध्यक्षता के है फिर हमसे बातें करेंगे, और गायक मंडली गाएगी व्हेंस इज दैट गुडली फ्रेग्रेंस फ्लोइंग।
At Christmas time, we believe.
हम विश्वासी यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं जो अनंत पिता का इकलौता पुत्र है। इस प्रथम अध्यक्षता के भक्ति समारोह में जो इस ऋतु को मनाने का हमारा नीड ढांचा बनता है, मैं उसके जन्म की घोषणा की भविष्यवाणियों के बारे में बात करूंगा। कोई भी घोषणा स्वर्गदूत के मरियम के पास आने से महत्वपूर्ण नहीं थी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है, और देख तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पास होगा, उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे प्रदान करेंगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। परमेश्वर का पुत्र का नश्वर जन्म और मरण स्वर्गीय पिता की योजना का में आवश्यक था ताकि मनुष्य को अमरता और शाश्वत जीवन प्राप्त हो। धरती की वचना से पहले यीशु मसीह को नश्वर जीवन अनुभव करने के लिए चुना गया था, और उससे उद्धारकर्ता बनना था जो योजना पूरी करने के लिए आवश्यक था। पिता आदम को आज्ञा दी गई थी कि वह चढ़ावा दे जो उसके पिता के अकलौते पुत्र के बलिदान के प्रतीक होगा, जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा है। इसलिए उसे सिखाया गया था, आपको सभी कार्य पुत्रों के नाम करने चाहिए, तुम्हें पछताना चाहिए और परमेश्वर को पुत्रों के नाम सदा पुकारना चाहिए। मूसा की किताब में हम इन बातों के बारे में परमेश्वर की व्याख्या पढ़ते हैं। उसकी उद्धार की योजना सभी मनुष्यों के लिए थी जो उसके इकलौते पुत्र के खून से जरिए जो समय के मध्य में आने वाला था। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम पछता कर उसके इकलौते पुत्र के नाम बपतिस्मा लेना चाहिए, और अनुग्रह जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा है जो यीशु मसीह है। स्वर्ग के नीचे वह एक ही नाम है जिसके जरिए मनुष्य के बच्चे उद्धार पाएंगे। पुराने नियम के भविष्यवक्ता यशायाह ने आने वाले मसीह के जन्म की घोषणा की थी। उसने कहा था, इस कारण प्रभु अब ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। यशायाह ने घोषणा की, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। मसीह के जन्म की भविष्यवाणी मोमन की किताब में भी है। मसीह के जन्म के 600 साल पहले लही ने सिखाया कि परमेश्वर यहूदियों के बीच एक मसीह उत्पन्न करेगा, जो दूसरे शब्दों में जगत का उद्धार करता होगा। भविष्यवक्ता अभिनादय ने घोषणा की, क्या मूसा ने मसीह के आने की परमेश्वर को अपने लोगों को उद्धार करने की भविष्यवाणी नहीं की थी? और जगत के आरंभ से क्या सभी भविष्यवक्ताओं ने थोड़ी बहुत इन विषयों पर भविष्यवाणी नहीं की थी? कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि परमेश्वर खुद मानव समाज में मानव शरीर धारण करके और महान शक्ति के साथ पृथ्वी पर आएगा? भविष्यवक्ता नफी ने दर्ज किया कि एक स्वर्गदूत ने उसे नासवी शहर में कुमारी दिखाई। देखो, जिस कुमारी को तुम देख रहे हो, वह मानव शरीर में परमेश्वर की पुत्र की माता है। और ऐसा हुआ कि मैंने, नफी ने उस कुमारी को आत्मा में कुछ समय के लिए जाते देखा। तब स्वर्गदूत ने मुझे कहा, देखो, और जब मैंने फिर से देखा, तब मुझे वही कुमारी अपने गोद में एक बच्चे को लिए दिखाई दी। और उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, परमेश्वर के मेमने को देखो, यह अनंत पिता का पुत्र है। हम सब उस पहली घोषणा से परिचित है जो यीशु के जन्म के बाद हुई थी। यह महत्वपूर्ण बात है कि घोषणा ऐसे लोगों को दी गई थी जो उस समय के समाज में सबसे विनीत लोग थे। और उस देश में गढ़वीय थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तब एकाएक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों को शांति हो। उसके जन्म के कुछ दिनों के बाद अलग घोषणाएं दो पवित्र लोगों को दी गई, जिन्हें आज की भाषा में हम मंदिर कर्मचारी कहेंगे। और देखो, यरूशलेम में शमोन नाम का मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की तसल्ली की प्रतीक्षा कर रहा था। पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा ने उसे प्रकट किया था कि मसीहा दिखाई देने के पहले उसे मौत नहीं दिखाई देगी। और वह आत्मा के बुलावे पर मंदिर में आया और जब माता पिता व्यवस्था की विधि बालक को यीशु को भीतर लाए, उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुआ कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है। दूसरी घोषणा एक पवित्र महिला को उसी मंदिर में मिली, ऐना, जिसे धर्मशास्त्र भविष्यवक्ता कहते हैं, बहुत बूढ़ी थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके दिन रात उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी और यरूशलेम के छुटकारे की राह दिखने वालों से उसके विषय में बात करने लगी। दोहराई गई भविष्यवाणियां और घोषणाएं उद्धारकर्ता के पहले आगमन के बारे में बताती हैं। अब हम प्रभु के दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं। इसकी अपेक्षा विश्वासी बेसब्री से करते हैं और अविश्वासी या तो डरते ही या अंधकारते हैं। हमें प्रभु का दिन आने तक बिना हिले पवित्र स्थानों में खड़े रहने की आज्ञा मिली है, क्योंकि देखो वह जल्द आएगा। इन पवित्र स्थानों में बेशक मंदिर और उसके अनुबंध शामिल हैं और घर जहां बच्चों को अनमोल माना जाता है और सिखाया जाता है और पुरोहितिक अधिकार जो दी गए हैं, जैसे मिशन, मंदिर सेवा, दूसरी बुलाहट जो हम निष्ठा से गिरजे की शाखाओं, वार्ड और स्टेक में पूरी करते हैं। जैसे हम उसके दूसरे आगमन की तैयारी करते हैं, जैसे हम पवित्र स्थानों में खड़े रहते हैं, हम बड़ा दिन केवल शुभेच्छा या सुखदायक छुट्टी के रूप से नहीं, पर परमेश्वर के पुत्र के जन्म के उत्सव के रूप में मनाते हैं, जब हम उसके वचन और उसकी क्षतिपूर्ति के शाश्वत महत्व के बारे में गौर करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम ये करने में वफादार रहेंगे। मैं इन सब बातों की सच्चाई का बयान उसके नाम में देता हूँ जिसका जन्म का उत्सव हम मना रहे हैं, वो भी यीशु मसीह। आमीन।
My dear brothers and sisters, this wonderful time of year.
Madin ke hame komalta khushi aur prem ke ehsaas milte hai aur jaise sab mata pita kahenge aise hi ehsaas har ek naye janme bacche ke janm par hota hai. Bilkul masih ka janm kisi anya ki tarah nahi tha. Ho khas hame Bethlehem tak far safar ke bare hua in ek sadharan journey ek naye sitra चारवाहों से मिलान और देवदूत उनके जन्म की कहानी को यादगार बनाते हैं पर दरकर्ता के जन्म की कहानी की क्यों हम आत्मा को महसूस को करते हैं बलिदान बड़ा दिन के अवसर के दौरान उसका थोड़ा ही भाग है बड़ा दिन का समारोह सिर्फ कैसे यीशु की दुनिया में आया के बारे में प्रधान थॉमस एस मानसन ने कहा क्योंकि वो धरती पर आया हम अपने जीवन में आनंद और खुशहाली और शांति पा सकते हैं साल के हर दिन क्योंकि वो आया हमारे मरणशील जीवन को अर्थ मिला है यह अर्थ और साफ हो जाता है जब हम बड़ा दिन के कहानी के पूरी तरह देखते हैं जैसे प्रधान कुर्नबी हिंकली ने समझाया कोई बड़ा दिन नहीं होता अगर ईस्टर नहीं होता बेतलहम का नन्ना शिशु यीशु के और शिशु होता जो गेतसेमनी और कलवरी के मुक्ति दिलाने वाले मसीह के बिना आता और परम फलसफा के खुशहाल माहौल के सच्चा के बिना बेतलहम में यीशु का जन्म कहानी का शुरुआत नहीं है धर्मशास्त्र सिखलाता है कि वो शुरू में परमेश्वर के साथ था स्वर्ग के मरणशील जीवन से पहले के सलाह वाला सभा में हम भी वहाँ थे जहाँ हम उसे जेहोवा के नाम से जानते थे हमने सीखा कि वो मुख्य भूमिका निभाएगा इस दुनिया का बनाने वाले और मुक्तिदाता के रूप में हम आनंद में चिल्लाया जब हमें हमारे पिता के महान खुशहाली के योजना को पाया हमने खुशी से मरणशीलता के मुसीबतों को माना था क्योंकि हमें एहसास था कि यीशु पिता की इच्छा पूरी करेगी यहाँ इस धरती पर हमारे पिछले जीवन का यादाश्त बोलने के एक पर्दे के ढका है इस धरती पर आने का कमरा हमारा लक्ष्य था सीखना कि ऐसा विश्वास में नहीं इस उस विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा है इनमें से एक भविष्यवक्ता था नीफा जिसने दृश्य में एक पेड़ देखा जो बहुत सुंदर और सफ़ेद था जब उसने इस सपने को मतलब जाना चाहा उसे नाजरत शहर और मेरी एक गौर सुंदरी दिखाया गया जो देवदूत नीफा के पास आया उसने ये बहुत गौर करने वाला सवाल पूछा क्या तुम परमेश्वर की कृपा को जानते हो दूसरे शब्दों में क्या तुम समझते हो कि क्यों परमेश्वर खुद दुनिया में आया क्यों वो सभी भरती से नीचे झुका नीफाई का जवाब कुछ अस्थिर था मैं जानता हूं कि वो अपने बच्चों से प्रेम करता है पर मैं सभी बातों का मतलब नहीं जानता है देवदूत ने तब कहा जिस कुवारी को तुम देखते हो वो परमेश्वर के पुत्री का माता है नीफाई ने मेरी को अपने हाथों में एक बच्चे को पकड़े देखा और आनंद से देवदूत को कहा परमेश्वर के मेमने को देखो हान यह आनंद पिता का पुत्र है अचानक पेड़ का मतलब और मसीह का जन्म मानने का मतलब नीफाई को अच्छी तरह समझ में आया उसने कहा यह परमेश्वर का प्रेम है जो मनुष्य के बच्चों के हृदयों को में परमेश्वर करते हैं हाँ देवदूत ने कहा सबसे अधिक आत्मा को आनंदित करने वाली चीज़ है अब जाके नीफाई के दूसरे दृश्य को लगभग 600 साल बाद वो इंतज़ार किया गया पहले से भविष्यवाणी किया गया समय आ गया था है यीशु पर पर्दे के ऊपर गया और दुनिया में आया एक मासूम यीशु बनकर उनका पुत्र आत्मा उनका एकलौटा प्रिय पुत्र बन गया शहर में यह बच्चा जो सबसे विनम्र परिस्थितियों में पैदा हुआ सब सालों के आशार और डर उस रात बैतलहम के छोटे नगर में सहम गया पर ये तो अच्छा है कि यह कहानी यह खत्म नहीं होता है उद्धारकर्ता का जन्म जितना चमत्कारी था और ज्यादा चमत्कारी आने वाले थे हम यीशु के बचपन के बारे में बहुत कम जानते हैं हमें बतलाया गया है कि वो बूढ़ी और दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया 12 की उम्र तक वो चाहता था अपने पिता के काम करता वो काम था दुनिया को पिता का महान और आश्चर्य प्रेम अपने बच्चों को दिखलाया क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता प्यारे पुत्र दिया उनका पिता का काम था अच्छा करना वो दया का काम था रोगियों को स्वस्थ करना मृतियों को जलाना लंगड़े को चलाना अंधे को आँख देना और बहरों को सुनने की शक्ति देना उनके पिता का काम था हमारे विश्वास के आँखों को खोलना हमारे धार्मिक एहसास को जगाना और हमारे पीड़ा हमारे गमन हमारे रोग और हमारे पापों से चंगाई देना हमें हमारे कमजोरियों में शक्ति देना था और इससे पाने के लिए यीशु ने अपनी इच्छा से सभी तरह के पीड़ा विरोध तकलीफों और बकवाओं को सहा उनके पिता ने काम था हमें धरती के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करना उनके साथ वहाँ है अन्य शब्दों में उनका पिता का काम था और है मनुष्य को अमर मंशलता और आनंद जीवन देना आखिरी में बड़ा दिन की कहानी पूरी होती है जब उद्धारकर्ता के जीवन का अंतिम दिन की चर्चा होती है उस जरूरी समय में उद्धारकर्ता के सिमरी को बगीचे से कलवरी से क्रूस से बगीचे वाले एल्डर जेफ्री रॉलन ने सिखलाया उस जन का जोर और प्रभाव लौटेगा समय का शुरुआत तक और आगे बढ़ेगा पूरे आनंद तक हर एक मनुष्य की आत्मा का चुनाव उनके खड़े पर दौड़ कर यीशु गतसेमनी का बगीचा लगभग अकेले दाखिल हुआ उसने विमंत्र और आज्ञाकर्ता से उसने शुरुआत में घोषणा किया यहाँ हो मैं मुझे भेजे उसने अब कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में समता हूँ धरती खड़ा उठी उनके दोस्तों ने शोक मनाया और अंधकार जमीन पर छा गया उद्धारकर्ता आत्माओं के दुनिया में चला गया उनके आने का इंतजार कर रहे थे एक अलग समानता की शुरुआत में जो हुआ था परमेश्वर के पुत्र और पुत्रवार आनंद को कर चलाया जल्द ही हो समय आई क्या उसकी उद्धारकर्ता अपने शरीर फिर से प्यार और मौत पर अपना विजय पाए मेरी मैग्डलन उनके कब्र गई और उससे खाली पाया वो पहले थी उनके आवाज़ को सुनने और उनके प्यार चेहरों को देखने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया उनके हाथ और पैर को देखने के उन्हें छूकर देखने दिया ये है वो बड़े आनंद का सुसमाचार जो हम बलिदान बड़ा दिन पर मानते हैं सिर्फ ये नहीं कि मसीह पैदा हुआ पर कि वो हमारे मध्य में जिया था उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया और पुनर्जीवित हुआ और आखिरी में वो काम खत्म किया जो उनके पिता ने उसे करने भेजा था हम आनंद मानते हैं क्योंकि इस दुनिया का अभिषेकता और उथल पुथल शांत किया जाए एक वादा यीशु मसीह के परिचित द्वारा पूरा हुआ इस कारण बड़दिन की कहानी पूरी नहीं है ईस्टर के कहानी के बिना बैतलहम के शांत रात्रि पवित्र हुआ था वो उसका मुक्ति पर उपहार था जिसके कारण हम आनंदित होकर चिल्लाया था मानसिल जीवन के पहले के दुनिया में जिस उजियाली को हम बड़ा दिन पर इतना चाहते हैं दुनिया के उजाले यीशु मसीह के आता है जिस कहानी को हम बड़ा दिन पर पसंद करते हैं हमारे पिता के खुशियाली की योजना को बताते हैं जो मसीह का मन मुमकिन है वो उपहार जो बड़ा दिन को पवित्र बनता है उनका ही अपना जीवन है उसने आओ हम इस ऊपर को गर्म करें और उनके प्रेम और उनके सुसमाचार को पूरे संसार के साथ बताएं, खासकर सालकर आश्चर्य मनुष्य में यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
See? Thank you. We will now be pleased. Aham
Prashan Honge by Douglas D. Holmes. Sesud Nikaliye Jo Jawan Prush. के महाध्यक्षता के प्रथम सलाहकार है भाई होम्स के बाद गायक मंडली गाएगी वेक्सफोर्ड कैरोल हमारे अंतिम भाषणकर्ता आज शाम होंगे प्रधान हेनरी बी आयरिंग जो प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार होंगे
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स
भाइयों और बहनों मुझे आज वक्त आपसे मिलने का सौभाग्य मिला है आज से तीन हफ्ते बाद बड़ा दिन आएगा उस सुबह लाखों बच्चे असामान्य रूप से अपने माता पिता से पहले उठेंगे और उन्हें जगाएंगे उन पहाड़ों की ओर देखते हुए उन्होंने कई दिन उत्सुकता से प्रतीक्षा की होगी मेरे पिता को बड़ा दिन पसंद था उपहार देने से वे बहुत खुशी पाते थे मेरे भाई बहन और मैं माता पिता के उपहार चुनने की कला से लाभ पाते थे उनके सबसे बढ़िया उपहार वास्तविक नहीं थे वो उपहार अनुभव थे जिन्होंने हमें प्यार और बहुमूल्य यादों से बांध लिया था उन यादों से हम आज भी खुशी मिलती है उपहारों के लिए लेन देन बड़े दिन के अवसर पर योग्य लगती है आखिर हम परमेश्वर के अतुलनीय उपहार उसके बेटे ईसा मसीह का उत्सव मना रहे हैं जाहिर है हमारे उपहार उस उपहार के सामने फीके रहेंगे पर मैं मानता हूँ उपहार की लेन देन की खुशी हमारे हृदय को परमेश्वर के उपहार की ओर मोड़ सकती है वह उपहार हमें शांति और आने वाली दुनिया के शाश्वत जीवन पाने में निमंत्रण देते हैं इस संघर्ष और फूट से उभरती हुई दुनिया में शांति का पाना कठिन है पर हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता और उसका बेटा हमें शांति देना चाहते हैं अगर हम उसे स्वीकार करना चाहे तो सोचो कितना अजीब होगा अगर हम बड़े दिन की सुबह उसके उस पेड़ के आसपास बैठे उसके सुंदर उपहारों को सहारे सराहे और उनके अंदर क्या है उसके बारे में चर्चा करें और फिर उन्हें खोले बगैर सवा दिन बताएं। दुर्भाग्य से हम परमेश्वर के उपायों के साथ यही करते हैं उद्धारकर्ता के इन बातों पर गौर करो आदमी को उपहार का क्या फायदा जो वह ठुकराता है देखो वह दी हुई चीजों में आनंद नहीं लेता ना ही उसमें आनंद लेता है जिसने वो उपहार दिए हैं आज मैं सभी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि हम परमेश्वर ने दिए उपहारों को स्वीकार करें खास तौर पर पवित्र आत्मा को मैं प्रार्थना करता हूं कि हम पवित्र आत्मा हमें उसका महत्व समझाएगी उस उपहार को पवित्र समझाएगी और हमें उसके इशारों पर चलने के लिए अनुग्रह देगी पवित्र आत्मा का उपहार इतना हम क्यों चाहते हैं पवित्र आत्मा देवत्व का तीसरा हिस्सा है वह दिलासा देने वाला मार्गदर्शक शिक्षक और पवित्रकर्ता होने के कारण इंसान का हृदय बदल सकता है उसके द्वारा हम परमेश्वर की शक्ति और गुण हमारे जीवन में ला सकते हैं तुम्हें उसके कुछ गुण याद होंगे खुशी शांति धैर्य कोमलता नेकी विश्वास नम्रता और संयम स्वर्गदूत ने दिया हुआ ये वादा बड़े दिन की आत्मा का अच्छा विवरण है मैं बेहद आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ और मनुष्य की ओर शांति और सद्भाव हो पवित्र आत्मा स्वीकार करने से ये वादा थोड़े दर्जे में पूरा होता है हम अक्सर बड़े दिन का भाव साल भर निभाने की बात करते हैं स्वाभाविक है कि हम चाहते हैं कि यह दिव्य गुण हमारी आत्मा में सदा रहे और हमारा सिद्ध पिता चाहता है कि हमें ये उपहार में हम असलियत में पाएं ईसा मसीह का सुसमाचार का यह महान वादा है कि पवित्र आत्मा हमारा हृदय बदलेगी ताकि हमें दुष्टता की इच्छा भी नहीं बचेगी सिर्फ सदा भले कार्य करने की रहेगी और हम इस आशा और सिद्ध प्यार में भर जाएंगे पवित्र आत्मा को वास्तविक रूप से स्वीकार करने से हमारे लिए ये दिव्य उपहार खुलेंगे. पवित्र आत्मा का उपहार हमें इन शब्दों से प्रस्तुत किया जाता है, पवित्र आत्मा स्वीकार करो. मैं तीन कुंजियों की ओर संकेत करता हूँ जो हमें दिव्य उपहार पाने में सहायता देंगे. मोमन की किताब में मसीह ने पुनरुत्थान के बाद एक चमत्कारिक दिन लोगों के साथ बिताया, फिर अगले दिन लौटने का वादा किया. ये खबर फैली और सारी भूमि के लोग बड़ी अपेक्षा के साथ इकट्ठा हुए. कुछ लोगों ने रात भर कष्ट किया ताकि वह सुबह उस जगह पहुंच पाए जहां मसीह आने वाला था. जैसे वह लौटने का इंतजार कर रहे थे, उसके चेलों ने भीड़ को यीशु ने सिखाई हुई बातें दोबारा सिखाई. फिर उन्होंने घुटना टेक कर उनकी सबसे गहरी चाहत के लिए प्रार्थना की. उन्होंने चाहा कि उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान की जाए. सोचिए ये कितना महत्वपूर्ण है. वे उत्सुकता से इस वादे के अनुसार उद्धारकर्ता के लौटने की अपेक्षा कर रहे थे, पर उन्होंने उसके लिए प्रार्थना नहीं की. उस सिद्ध शिक्षक द्वारा और उसके बाद उसके चुने हुए चेलों द्वारा सिखाए जाने के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा का उपहार चाहा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी. ये तीव्र अति महत्वपूर्ण आध्यात्मिक इच्छा इस उपहार पाने की कुंजी है. प्रधान हेनरी आयंग ने सिखाया, क्योंकि कईयों के पास कभी कभी पवित्र आत्मा का इच्छा होती है, पर वो रुक रुक कर आती है, और खास तौर पर संकट के समय. पर आगे चलते हुए सुरक्षित स्थान पहुंचने के लिए उस चाहत को निरंतर और तीव्र बनना पड़ेगा. भाइयों और बहनों, ये उपहार पाने के लिए हमें सारे हृदय से उसे चाहना पड़ेगा. मोमन की किताब में लौटने पर हम एक और कुंजी पाते हैं. जिस पवित्र आत्मा का उपहार वे बहुत चाहते थे, उसके लिए दरखास्त करने के बाद वो चेले पानी में उतरे और उन्होंने बपतिस्मा लिया. फिर सब ने बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरी और वे पवित्र आत्मा की अग्नि से भर गए. बपतिस्मे और धर्मविधि का संकल्प इसकी एक शारीरिक गवाह है कि हम ईसा मसीह को याद करेंगे, उसकी आज्ञा पालेंगे, उसका नाम खुद पर लेंगे और हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा को चाहेंगे. हर हफ्ते हम परम प्रसाद के द्वारा उस वादे को दोहराने का मौका मिलता है ताकि उसकी आत्मा हमारे साथ सदा रहे. बापतिस्मे और परम प्रसाद की विधियां हमें जीवन में परमेश्वर की शक्ति लाने में सहायता देती हैं. एक तरीके से ये दोनों उस राह का चिन्ह है जो राह हमें परमेश्वर स्वरूप बनाने की मंजिल के करीब लाता है. हम मसीह में नए प्राणी बनते हैं, उसके बेटे और बेटियां. यही हमारी मंजिल है. इस मंजिल की तरफ हम हर हफ्ते बढ़ते हैं जैसे हम परम प्रसाद उसके वादे के पर विश्वास करते हुए लेते हैं, जैसे हम उसका अनुबंध पालेंगे और धीरे धीरे आत्मा से भर जाएंगे उस सिद्ध दिन आने तक. इस साल बड़ा दिन रविवार को आएगा. हम परम प्रसाद लेते हुए उसका जन्म और क्षतिपूर्ति मनाएंगे. उसका यह आशीर्वाद मिलेगा हमें. आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है ईसा मसीह पर विश्वास. पवित्र आत्मा उसके चेलों पर बड़ी शक्ति से आने के बाद मसीह दिखाई दिया और उसने उसके पिता को उस मूल्यवान उपहार के लिए धन्यवाद दिया. उसने कहा, आपने उनके मुझ पर विश्वास के कारण उन पर पवित्र आत्मा प्रदान की है. मसीह और उसके सिद्ध क्षतिपूर्ति पर विश्वास हर अच्छे उपहार का स्तोत्र है. विश्वास बढ़ाने पर हमारे जीवन में ज्यादा आशीर्वाद आते हैं, तो हम मसीह पर विश्वास कैसे बढ़ाएंगे? हमें उसके वचन पर भोज करना चाहिए और उसकी आज्ञा पालनी चाहिए. लीडर डी टॉड क्रिस्टोफरसन ने सिखाया, सभी धर्मशास्त्रों का केंद्रीय लक्ष्य है हमारे हृदय को पिता परमेश्वर और उसके पुत्र ईसा मसीह पर विश्वास से भर देना. यह सच्चाई मोमन की किताब में कई बार सिखाई गई है. उदाहरण राजा बंजामिन ने देवताओं द्वारा वचन पाया और फिर वह उसकी प्रजा को सिखाया. उसने उनके हृदय में अधिक विश्वास पैदा हुआ. इस विश्वास के द्वारा उनके हृदय में एक महान परिवर्तन आया. अगर हम पवित्र आत्मा को हमारे दैनिक साथी चाहेंगे, हम धर्मशास्त्रों, जीवित भविष्यवक्ता और आत्मा की फुसफुसाहट पर भोज करेंगे और उसका पालन करेंगे. इस दैनिक उजियाली ले और सच्चाई की खोज द्वारा हमारा मसीह पर विश्वास बढ़ेगा. हमारी उसके जैसे बनने की चाहत बढ़ेगी और हमारी पवित्र आत्मा को अपने साथ सदा रखने की क्षमता भी बढ़ेगी. भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें ये मूल्यवान उपहार मुफ्त में देता है. बड़े दिन के समय और साल भर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम उन्हें इन चाबियों से घुमाकर खोलेंगे. मैं बयान देता हूँ कि ये करने से हम कदम कदम पर और दर्जे दर्जे से प्यार, खुशी, शांति, शुद्धता और शक्ति से भर जाएंगे. हम ईश्वरीय स्वभावों के सहभागी होंगे. हम उपहार और उपहार देने वालों दोनों में खुशी पाएंगे. और जब वह फिर से आएगा, हम उसे हमारा राजा स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे. और जब वो आएगा, हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे. ईसा मसीह के नाम, आमीन.
What our good God for us has done.
I am grateful to share
this समारोह को आपके साथ मनाने के मौके के लिए हमारा लक्ष्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मान करना हमारी आशा है खुद के लिए और हम जिसने प्रेम करते हैं के लिए बड़ा दिन के सच्चे आत्मा को पाना उसे आत्मा के विशेषता शांति है राजनीतिक शांति है नहीं क्योंकि उदारकर्ता डर और उथल पुथल के समय पैदा हुआ ताकि उनके परिवार को शर नक्तियों की तरह इजिप्ट भागना पड़ा था आर्थिक शांति नहीं क्योंकि वो अस्तबल में पैदा हुआ और जर्नी में लिया गया और नहीं हो शांति जो मिलती है जब सब तोहफे रंगीन खास में बंद दिए जाते हैं पेड़ों को सजा दिया जाता और मैं तैयार होता है क्योंकि वो शांति तो सिर्फ पल भर की है बड़ा दिन का शांति परमेश्वर की शांति है जो समझ से बिल्कुल है देवदूत पौल ने वादा किया कि हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में से सुरक्षित करेंगे और पौल सही था वो शांति जैसे हमें ढूंढते हैं सिर्फ यीशु मसीह के जरिए और वजह के मुमकिन है हम में से कुछ लोग सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण में रहते हैं फिर भी हम अंदर से शांत अनुभव करते हैं अन्य लोग शांति और संपूर्ण शांति महसूस करते हैं निजी घटी दुर्भाग्य और लगातार आने वाले मुश्किलों के द्वारा जो लोग मरणशीलता में आए हैं उसने उद्धारकर्ता ने कहा संसार में तुम्हें कष्ट मिलता है फिर भी उसने अपने चेलों को यह आश्चर्यजनक वादा दिया अपने मरणशीलता से प्रचार को दौरान मैं तुम्हें शांति देता हूँ अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है मैं तुम्हारे नहीं देता ये जानना के संतुष्टि के ये निजी शांति का वादा उनके वादा किया यह वादक उनके जन्म लेने के रात को भी दिया गया था जब स्वर्गदूत उद्धारकर्ता के जन्म के जय जयकार कर रहे थे उन्होंने घोषणा किया आकाश में परमेश्वर की महिमा और पवित्र पर उन मनुष्यों में जिनसे वो परेशान है शांति हो साल के इस आवेश भरे अवसर पर उन किसी और समय से ज्यादा शांति ढूंढते हैं सभी तो फाओ को देने वाले से आज रात में उन कई तरीकों में से कुछ तरीकों को बताना चाहता हूँ पहला जो देवदूतों के तरह जो उनके जन्म की रात को गा रहे थे हम शांति महसूस करते हैं दातकर्ता यीशु मसीह को याद करते हम आया उनके भक्ति पर बड़ा दिन के जन्म का उत्सव है हम सब ने एक नवजात शिशु को देखने से के आश्चर्य को महसूस किया है हम कोमलता महसूस करते हैं हम आभार महसूस करते हैं हम शांति महसूस करते हैं और हमारे हृदयों में प्रेम का एहसास आता है जिसे हम देना चाहते हैं और संशील होना चाहते हैं उनके जन्म को याद करने के समय क्योंकि बड़ा दिन के जन्म का समारोह किसी और जन्म से अलग यीशु का जन्म परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने सदियों पहले देखा था ये था वादा किया मसीह का जन्म शब्द यादसाद से मेरे दिल में उतरती है और बड़ा दिन के मौके पर मैं अपने मान के में एक खुशहाल गायक मंडली को गाते सुनता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत सलाहकार प्रकुमारी परमेश्वर आनंदकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा पहले बार जब मैंने ये शब्द सुने थे मैं सोलह टैबनेकल के बालकनी में एक गायक मंडली हैंडल का संगीत गा रही थी मुझे याद है अपने दिल में कुछ महसूस करना मैं उस समय छोटा था अब मैं बड़ा हूँ और मैं जानता हूँ को क्या महसूस था वो पवित्र आत्मा था जिसका साथ मुझे मिला था आठ साल का उम्र में आत्मा ने मेरे दिल को बतलाया कि मैंने जो शब्द उन रात गाए थे वो सच है जो शिशु बेथलहम में बहुत दिनों पहले पैदा हुआ था परमेश्वर का पुत्र पिता का एकलौता था वो उनके आगे झुके वो उद्धारकर्ता के भक्ति करने आए थे वो परमेश्वर का मेहमा था अपना प्रतिष्ठित का बलिदान के मौत के बंधन को तोड़ने आया था वो हमारे दुखों और कष्टों को सहने की शक्ति के साथ आया था ताकि वो समझे कैसे हमें सहायता करना है और वो हमारे पापों को प्रश्चित करने लिए जन्मा के क्योंकि सिर्फ वो कर सकता है वो पैदा हुआ कि मनुष्य भी ना मरे पैदा हुआ कि संसार के बच्चों को उठा सके पैदा हुआ कि उनके दूसरे जन्म के सके सुनो जय जयकार करने वाले देवता है जो ऐसा मुझे तबनकल के पलकनी में हुआ था उस रात होता विश्वास और आशा मुझे विश्वास महसूस हुआ कि हमारे लिए एक बच्चा जन्मता के कारण मेरे नाम में आशा हो मुझे परिजीवन मिलेगा और मौत की चुबान स्वर्ग के पिता के शब्जी सभी बच्चों से दूर किया जाएगा उनके जन्म को तोहफे के कारण मेरा हृदय तुम्हारा हृदय और सभी मनुष्य के हृदय बदल कर सकते हैं कि छोटे बच्चे से बनने में शुद्ध साफ परमेश्वर के पास घर लौटने के लिए तैयार जिसने हमने एक उद्धारकर्ता दिया था और वापस जाने के मार्ग भी उनके स्वर्गीय घर में मैं आभार और शांति महसूस किया और हम सब भी कर सकते हैं पिता और पुत्र के तोहफे के कारण दूसरा उन चरवाहों की तरह जिन्होंने मिसेज शिशु को देखा था और सभी वो ये बात बताई उनके जन्म की अच्छी खबर हम अपने परिवारों और औरों को शांति सिखा सकते हैं हम ऐसा करते हैं जब हम उनके मन और हृदय को धर्मशास्त्र से प्रचित करते हैं जब हमारे बच्चे छोटे थे हमें एक बड़ा दिन का पैजन किया उसके जिससे सब शब्द धर्मशास्त्र के लिए गए थे हमारे नुमाइश का शुरुआत के में कम लोगों की जरूरत थी धर्मशास्त्र के बात बोलने के लिए मैं जोसेफ था मेरे पत्नी मेरी थी और एक गुड़ा मसीह यीशु था एक एक्टर आया और यीशु उसे था फिर आए चढ़ने वाले बाथरोब पहने हुए चढ़नी में भक्ति करने के लिए और उसके बाद हम राजाओं को ला सकते जिनके पास कीमती तोहफे थे कुछ सालों बाद हमने एक नुमाइश के बच्चे से शुरू किया जो सेम और लेमना था जो कि आने वाले वादा किया मसीह को जन्म के भविष्यवाणी कर रहा था हर साल जैसे जैसे क्रोधित भीत मजबूत और निपुण होती गई हमें उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि सैमुअल को मारा नहीं जा सकता था क्योंकि वो परमेश्वर की सुरक्षा में था और इसलिए कि हम शांति को आमंत्रित कर रहे और अपना रहे थे हमें छोटे बच्चों के लिए शब्द चाहिए थे और इसलिए हमने भेड़े और बच्चे लाए चरवाओं के पीछे घूमने के लिए मेंजा में पर फिर समय बीता गया जैसे हर जगह होता है खिलाड़ी बड़ हो गए और अब हम शुरुआत की तरह है मैंने उन जोसेफ मेरी चरवाहों भेड़ों बच्चों और राजाओं को अपने छोटे प्रियजनों को शिकलते देखते देखा है उद्धारकर्ता और उनके जन्म से मिले शांति के बारे में हमारे नुमाइश में किरदार को पूरा करने के उन्हें आशीष मिली उद्धारकर्ता के बारे में सीखने और यह जानने में कि हम क्यों उसने प्रेम करते हैं मैं आभारी हूँ कि हमारे बच्चे और उनके बच्चों ने हमें देखा यीशु का सम्मान करते जो आनंद बलिदान अनमोल तोहफा होने को था स्वर्ग के पिता की शांति को जो उनके बच्चों के लिया था. तीसरा, वाइसमैन की तरह हम प्रेम और शांति को तोहफे दे सकते हैं पूर्ण चिरवत प्रभु के चेलने होने का. बिशप सेलस जो रेक्सबर्ग आइडाहो के हैं ने ऐसा किया. उन सालों में बिशप की नियुक्ति पाने के बाद उनका वार्ड का चैपल हाईवे के पास था. उस छोटे शहर में बेरगुआरी के उन दिनों में कई लोग यहाँ से वहाँ जाते थे इस आशा के साथ कि वो किसी तरह से खुद को पल सके. वो अक्सर किसी अंतिम दिन संत बिशप के सहायता लेते थे. अक्सर वो जिन बिशप के पास जाते हो उनके बिशप सेलस के पास भेजते थे. इसके एक वजह थी सेलस परिवार जरूरतमंद अजनबियों को आमंत्रित करते थे. उनके डिनर के मेज पर सिर्फ उनका परिवार नहीं पर अजनबी भी हुआ करते थे. एक बार कोट उन्हें आ जाता और एक पार्सल दिया जाता अगले भोजन के लिए जो बहन सेलस ने बनाया था. वो बर्फीले दिन में निकलते थे गर्म हृदय के साथ. उस दिन उन्होंने जो देखा और सुना और एहसास किया उनके साथ रह गया बाकी के रास्ते तक. क्योंकि रेक्सबर्ग के ठंडी का मौसम बड़ा दिन के समय होता था और क्योंकि ये परिवार साल भर दयालुता करता सकता है. तुम और तुम्हारा परिवार ने भी अपने खुद के बड़ा दिन के परंपरा स्थापित किया होंगे अपने परिस्थिति अनुसार, मगर उनमें कुछ बात सामान्य होंगे. क्योंकि मैं भूखा था और तुम्हें मुझे खाने को दिया. मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया. मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया. मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाया. मैं बीमार था और तुम्हें मुझसे मिलने आए. और वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे बहनों भाइयों के से किसी तरह साथ किया वो मेरे ही साथ किया. देवदूत चार वाले और वाइस मैन ने यीशु मसीह में अपने विश्वास से शांति ढूंढता और प्यार पाया. तुम्हें भी मिलेगा. उद्धारकर्ता का जन्म वो तोहफा है जिसके जरिए पिता हमें इस जीवन में और आनंद जीवन में शांति देगा. हम खुशी से चिल्लाए थे आत्मिक दुनिया में जब हमने उस वादा को सुना था. शांति और आनंद हमें फिर से मिले जब इन शब्दों को गाते हुए सुने कि परमेश्वर के प्रेम भरा वादा पूरा हुआ है. सब शांत है, सब उज्वल है. महिमा आए दूर स्वर्ग से वासी गाय अलेलुया. मसीह उद्धारकर्ता जन्म है. मैं प्रार्थना करता हूँ कि शांति आए और हम सब का साथ रहे जैसे हम अपने प्यारे स्वर्ग के पिता को याद प्रेम और भक्ति करते करें उनके साथ बने वादों को निभा कर. हम हमेशा यीशु मसीह के सेवा और दया को याद रखो जो उनके मरणशील प्रचार के समय किया है. मैं गवाही देता हूँ कि यीशु ही मसीह है पिता का प्रिय पुत्र. मैं गवाही देता हूँ कि प्रधानमंत्री थॉमस एस मानसन परमेश्वर का जीवित भविष्यवक्ता है. उनका और प्रथम अध्यक्षता का तमन्ना है कि तुम्हें इस अवसर पर और हमेशा आनंद प्रेम और शांति के एहसास मिले जो उद्धारकर्ता ने अपने विश्वासी और आज्ञाकारी चेलों से वादा किया था. यीशु मसीह के नाम से आमीन.
Dear brothers, dear sisters, dear children, dear friends, as we conclude
this evening together, we express appreciation. Tabernacle Gayak Mandali aur Temple Square ke orchestra ko dhanyavad dete hain sundar bada din sangeet ke liye jise hamare hriday mein khushi aayi. उसी तरह हम भाषणकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं और उन सब को जिन्होंने किसी भी तरह सहयोग दिया इस डिवोशनल को मुमकिन करने के लिए. इस सुंदर अवसर के शुरुआत में हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको आशीष मिले उसे शांति और आशा को अनुभव करने के लिए जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मुक्ति दिलाने वाले प्रेम से मिलता है. अब हम इस सभा को समाप्त करेंगे गायक मंडली को साइलेंट नाइट गाता सुनकर. सभा तीसरा वर्ष साथ मिलकर गाएंगे. अंतिम प्रार्थना जब तब भाई एम जोसेफ ब्रफ जो कि जवान पुरुषों के महा अधिकारियों के दूसरे सलाहकार द्वारा दिया जाएगा.
Our very blessed Christmas season and enjoy these beautiful days as the Lord is giving us this Christmas time to remember Him and the great sacrifice He has given to and gift He has given to us.
Our kind and holy Heavenly
Father, at the end of this devotional, we give these thanks. Thanks के बाद हम आपको आभारी मानते हैं.
We are grateful.
हम आभारी हैं. दूसरे किसानियों के साथ ये रुचि मनाने का लिए हम उसके हमारे लिए त्याग के लिए आभारी हैं और उसके पुनरुत्थान के लिए हम आभारी हैं. हमारे भविष्यवक्ता के लिए थॉमस एस मॉन्सन हम आभारी हैं. पहले प्रधानों के लिए और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं. आज हम प्रार्थना करते हैं और दूसरे दूतों के लिए जिसे हम मिशनरी कहते हैं जो दुनिया भर में आपके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं. आप उनके आशीर्वाद दीजिए कि वे अब आत्माएं ला पाएं आपके लिए. हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हम भी दूसरों को खोज पाएंगे और उनके पास भी सुसमाचार ला पाएंगे. हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हम अच्छे प्रतिनिधि बनेंगे आपके सुसमाचार के. इस मसीह के नाम आमीन.